نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں بیٹھنے کا موقع دیا. آج ہم کچھ باتیں بیت اللہ کے ناطے سے کریں گے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا خلاصہ جو آپ نے بیت اللہ کے حج کے موقع پہ, جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں, اس موقع پہ کہیں تھی. سب کو وہ حدیث آتی ہے, اس لیے صرف اس کا اشارہ ہی کرنا کافی سمجھوں گی کہ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے. لوگوں نے کہا کہ آج عرفے کا دن ہے. کون سی جگہ ہے؟ یعنی پہلے تو خاموش رہے کہ شاید اللہ کے نبی کچھ اور کہیں گے, تو پھر آپ خود ہی کہتے تھے کہ آج عرفہ نہیں ہے. جی اللہ کے نبی, ہم اس لیے آگے بڑھ کے نہیں بولے کہ شاید آپ کچھ اور کہیں گے. آج کون سی جگہ ہے؟ کرتے کرتے جب لوگوں نے بتا دیا کہ آج بہترین جگہ ہے, بہترین جگہ پہ ہم لوگ موجود ہیں, تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں, تمہاری جان, تمہاری مال اور تمہاری عزت اتنی ہی محترم ہے جتنی کہ یہ جگہ, یہ دن اور یہ سب کچھ. تو تھوڑی سی بات کروں گی کہ مومن کی عظمت کیا ہوتی ہے. اس کے لیے تاریخ کا ایک آدھا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پہلا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے. ایران حضرت عمر کے دور میں فتح ہوا تھا. آپ چھوٹے چھوٹے بس چھوٹے چھوٹے پوائنٹس نوٹ کریں گے نا تو جو تھیم آف دی سٹوری ہے وہ آپ کو مل جائے گا. اس وقت ایران کی مسلم فوجوں کے جو سپہ سالار تھے وہ سعد بن ابی وقاص تھے. جنگ میں ایرانیوں کا کافی نقصان ہوا. آپ کہہ لیجئے کہ ایرانی ایسے ہیں جیسے آج کے ہندو, پیگن تھے, مشرق تھے. خیر جب ان کا نقصان ہوا تو انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں سے کچھ بات چیت کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ عقل مند تھے, ان کو پتا تھا کہ لڑائی لڑیں گے تو ہار جائیں گے, تو چلو آؤ کچھ نیگوسیشن کرتے ہیں, کچھ لے دے کے بات کرتے ہیں. حضرت سعد نے مختلف وفدوں کو رستم جو کہ اس دشمن قوم کا جو سردار تھا اس کے, اور یزدگرد کے دربار میں بھیجا کہ جو دیکھتے ہیں کہ دشمن کیا کہتے ہیں. نعمان بن مقرن ایک شخص تھے, فرات بن حیان تھے, حنزلہ تھے, اتارت تھے, اشس تھے اور کچھ اور مشکل نام ہے. ان سب کو بھیجا کہ جو دیکھو کیا ہوتا ہے. اب آپ ذرا امیجینیشن میں لائیں, مسلمانوں کی فوج کے چند لوگ ایک کافر قوم کے دربار میں جا رہے ہیں, آج کتنی رونت ہے. لیکن وہاں جا کے کیا ہوا؟ جب مغیرہ کا وفد شہنشاہ یزدگرد کے زرق برق دربار میں آیا, یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس دور میں لوگ اپنے درباروں کو بہت سجاتے تھے, جیسے آج ہم اپنے ڈرائنگ روم اور اس طرح کی جگہوں کو جہاں بڑے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں سجاتے ہیں. مدائن کے محل میں انہوں نے انتہائی بے خوفی کے ساتھ تقریر کی. ان کی بات سن کر جو دشمن بادشاہ تھا وہ بگڑ گیا, اس کو غصہ آیا, کہنے لگا تم میرے سامنے اس طرح کی باتیں کرتے ہو, یعنی تمہیں کیا ہو گیا, تم میرے ساتھ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. دیکھو اگر امبیسیڈر یعنی ایلچی کا قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم کو قتل کروا دیتا, لیکن تم واپس جاؤ, اپنے امیر کو بتا دو کہ میں سپہ سالار رستم کی سرکردگی میں ایسا لشکر بھیجنے والا ہوں جو تم سب کو قادسیہ کے خندق میں دفن کر دے گا. شاید آپ اتنے مشکل لفظوں کو پا ہی نہ سکیں, مطلب یہ تھا کہ دشمن بادشاہ کو مسلمان سپاہی کی بے باکی بری لگی. اس نے کہا بس معاف تو کر دیتا ہوں ورنہ مروا دیتا, لیکن جا کے اپنے امیر کو خبر دے دو کہ بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں اور تم سب کو دفن کر دیا جائے گا قادسیہ میں. اب آپ سوچئے آج کے دور میں یہ ایسی ہے جیسے جنگ کی دھمکی کسی دشمن ملک نے مسلمان کو دی. خیر اس کے بعد اس بادشاہ نے کیا کیا, اپنے محل کے آدمیوں سے کہا ایک ٹوکری میں مٹی بھر کر لاؤ. مٹی لائی گئی. اس نے مسلمانوں کے وفد سے مخاطب ہو کر پوچھا تم میں سب سے زیادہ شریف کون ہے, یعنی آنرڈ کون ہے, کون سردار ہے, یعنی سب سے بڑا. اصل یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ عزت والا ہے بلاؤ اس کو تاکہ میں اس کو سب سے زیادہ ذلیل کروں. خیر وفد کے سب لوگ چپ رہے. یہاں یہ دیکھیے بات ہے نوٹ کرنے کی, کسی کو اپنے بڑے ہونے کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا. خیر عاصم بن عمر بولے میں سب سے شریف ہوں, یعنی جب کوئی نہیں آگے بڑھ رہا تو میں بڑھتا ہوں. تو اس بادشاہ نے حکم دیا کہ مٹی کی ٹوکری عاصم بن عمر کے گلے میں لٹکائی جائے اور ان کو یہاں سے بھگا دیا جائے یہاں تک کہ وہ مدائن کے باہر چلے جائے. جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کسی کے سر میں خاک ڈالنا, یہ وہ بات تھی, یعنی ذلیل اور رسوا کرنا چاہا مسلمانوں کو کہ نکل جاؤ ہمارے ملک سے. شاہی حکم کے مطابق مٹی کی ٹوکری عاصم بن عمر کے گلے میں لٹکا دی گئی. امیجن کریے وہ اس کو لے کر مدائن کے محل سے نکلے اور اونٹنی پر سوار ہو کر تیزی سے قادسیہ کی طرف روانہ ہوئے. جہاں حضرت سعد بن ابی وقاص مقیم تھے، یعنی مسلمانوں کے امیر لشکر۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے حضرت سعد کو ساری روداد سنائی اور مٹی کی ٹوکری ان کے سامنے رکھ دی۔ اب آپ سوچئے کہ اس وقت کیا ہو سکتا تھا، ایک قسم کی توہین تھی نا بظاہر، لیکن جو چیز اس کے اندر سے نکلے گی وہ ہم سب کے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس کے بعد مسلم سردار نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، ابشرو فقد واللہ آتان اللہ اقالید ملکہم، خوش ہو جاؤ، خدا کی قسم اللہ نے ہمیں ان کے اقتدار کی کنجیاں دے دی ہیں اور انہوں نے ان کے اس ملک پر قبضے کی فال لی۔ کسی ملک پر حملہ جب کیا جاتا ہے تو جو مقصد ہوتا ہے وہاں کی زمینوں پہ قبضہ ہوتا ہے، تو انہوں نے تو اپنی مٹی خود دے دی، تو جب مٹی دے دی ہمیں تو گویا کہ یہ قسم کی ہمارے لیے نیک شگون ہے کہ چلو وہ کیا ہم پہ حملہ کریں گے، ہم کرتے ہیں اور ہم ان کو انشاء اللہ تعالیٰ کنکر کریں گے۔ اب اس واقعے کو اگر آپ غور سے دیکھیں، اگر مسلمان اس مٹی کو پا کر غصے میں آتے، نفرت میں آتے، شکوے شکایت کرتے تو کیا ہوتا؟ اگریسو باتیں کرتے، غصے میں آتے، ہاں؟ ایک واقعہ تو بہت ہی ناخوشگوار اس بادشاہ کی طرف سے ہونا چاہا، لیکن انہوں نے اس کو خوشگواری میں بدل دیا۔ جو بات اس میں سے نکلی کیا کہ جب کوئی دوسرا گروہ یا دوسرا فرد یا دوسرا انسان آپ کو مشتعل کرنا چاہے، آپ کو غصہ دلانا چاہے، تو غصے کی بجائے اس کی بات کو خیر کی بات سمجھیں۔ مسلمان ہمیشہ آپٹمسٹک ہوتا ہے اور مسلمان کبھی بھی کسی چیز کو نیگیٹو نہیں لیتا، اور اگر آج کی اس دنیا کو دیکھیں تو اس کے اپوزٹ ہر شخص کمپٹیشن کرنا چاہتا ہے، ایک کو کھینچ کر دوسرا آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اب ایسے وقت میں ہوتا کیا کہ اکثر ہم غصے اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، کبھی انتقام، کبھی غصہ، میری قدر نہیں کی، مجھے کچھ سمجھا نہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن ہر وقت پھٹکا رہتا ہے۔ گھر کی دنیا سے لے کر باہر کی دنیا تک آج عموماً لوگوں کا حال کیا ہے کہ وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ لوگ میری قدر نہیں کرتے، لوگ مجھے پا ہی نہیں سکے، میں کتنا بڑا ہیرا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، جب ذہن منتشر ہے تو پھر کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی، کوئی بھی انسان پلاننگ نہیں کر پاتا اور کامیابی کی بجائے ناکام ہے۔ تو آج کے سیشن کی جو پہلی بات ہے، اس کو میں آپ کے لیے آگے لے کے چلوں گی، وہ کیا ہے کہ انسانوں کی اس دنیا میں اگر آپ جینا چاہتے ہیں تو رد عمل کی نفسیات سے خود کو بچائیے، اشتعال کے باوجود مشتعل نہ ہو، اعتدال میں رہیں، مطمئن رہیں، ہر چیز کا منفی اور مثبت پہلو دیکھا کریں۔ کل کے سبق میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کی تھی کہ ایمانی کیفیات کیا ہوتی ہیں، کہ انسان کی زندگی میں جو بھی حالات آئیں، دو ہی آ سکتے ہیں، یا اچھے یا برے، اصل چیز حالات نہیں ہیں، اصل چیز ان حالات پر ہمارا رد عمل ہے، ہاؤ وی ریئیکٹ۔ تو اپنی زندگی کو کبھی بھی ضائع نہ کریں دکھ میں کہ ہم بڑے دکھی ہیں، جلتے کڑتے کہ لوگ ہم پہ بہت سختی کرتے ہیں، اور یا پھر دوسری طرف یہ ہے کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جس بندے کو اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کی چھپی ہوئی باتیں ہوتی وہ نظر آنے لگ جائیں گی، تو وہ انشاءاللہ اسے بہت فائدہ دے گا۔ آج جو بات شروع کی، اس کو اب اگر ہم تھوڑا سا اپنے اگلے سیشن کے ساتھ لے کر چلیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑا ہی عرصہ پہلے ایک سفر کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جو محبت اللہ کی کتاب سے ہے وہی اللہ کے گھر سے ہوتی ہے۔ تو اس گھر کو دیکھ کر جو میسج ملے اس کو دیکھیں گے۔ میں چاہوں گی کہ ہم ایک آدھ ویڈیو دیکھیں، یعنی آپ کو ایک چھوٹا سا منظر دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے جب آپ اوپر کھڑے ہو کر نیچے لوگوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے وہاں، اور آپ کبھی لوگوں کی بھیڑ دیکھیں، لوگوں کا گھومنا دیکھیں، آپ دیکھیں کہ سب لوگ ایک ہی ڈائریکشن میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ چند چیزوں کو ہم دیکھیں گے کہ جب حج کریں یا عمرہ کریں، سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے وہ احرام ہے، لکھی اس کو، اور آپ ان چیزوں چیزوں سے کچھ سبق لیں گے کہ جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلی کیفیت احرام کی کیفیت ہوتی ہے۔ آف کورس اس سے پہلے کے مراحل جس کے اندر تیاری اور وہ سب کچھ تو ایک جنرل چیزیں ہیں ہی ہیں، اس میں بھی شوق اور جذبہ تو ہونا ہی چاہیے، لیکن تھوڑا سا ہم احرام پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ عموماً آپ دیکھیں کہ جو ساتھی جا چکے ان کو تو احرام کی ساری ڈیٹیلز پتہ ہوتی ہیں، جو نہیں جا چکے ان کے لیے یہ ہے کہ احرام ان سلے کپڑوں کا ایک جوڑا ہوتا ہے، یہ احرام نہیں ہے، احرام اصل میں کیفیت کا نام ہے۔ کیفیت کس چیز کی؟ کہ کچھ چیزیں جو عام زندگی میں حلال ہوتی ہیں احرام پہنتے ہی حرام ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسا کہ کچھ کام عام طور پہ حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں حرام ہو جاتے ہیں، مثلا کھانا، پینا، شوہر اور بیوی کا تعلق وغیرہ۔ احرام کی کپڑے کو اگر آپ دیکھیں تو اس پہ کوئی ٹانکا نہیں لگا ہوتا، انسٹرچڈ چادریں۔ عموماً مرد جو ہیں وہ دو سفید چادریں پہنتے ہیں، ایک ان کے ازار کے طور پر استعمال کی جاتی ہے اور دوسری اوپر ان کے کندھے کو چھپاتی ہے۔ عورتوں کا احرام بذات خود کوئی کپڑے کا نام نہیں ہے، لیکن احرام میں چونکہ کوشش کرنی چاہیے کہ سر کا کوئی بال نہ ٹوٹے، خاص طور پہ جان کے تو توڑنا بھی نہیں، تو اس کے لیے لوگ بچنے کے لیے اگر سر پہ ایک ایسا سکارف پہن لیتے ہیں کہ جس میں بار بار بال نہ کھلے تو وہ ایک کیفیت ہے، لیکن ایز اٹ از عورتوں کا احرام کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ہم اگر فی زمانہ اس سفید احرام کی بات کریں تو ذرا دیکھیے کہ سفر حج کس طرح سفر موت کو یاد دلاتا ہے۔ جب لوگ گھر سے نکلتے ہیں حج کے لیے، عموماً لوگ ان کو سی آف کرنے ایئرپورٹ تک جاتے ہیں، اسی طرح جب میت کا سفر آخر شروع ہوتا ہے تو لوگ ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جتنے بھی خوبصورت کپڑے گھر میں ہوں، حاجی غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور احرام پہن لیتے ہیں، اسی طرح میت۔ ڈیزائنر کلاتھ، بوتیک کلاتھ اور بی سی او جوڑوں کو چھوڑ کر پہلے میت کو غسل دیا جاتا ہے، پھر کافور کی خوشبو لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو سفید کپڑوں میں لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جس طرح حاجی کو لوگ چھوڑنے جاتے ہیں جہاز تک یا ایئرپورٹ تک، اسی طرح میت کو چھوڑنے کے لیے بھی قبرستان تک لوگ جاتے ہیں۔ جانے والے بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ایک مقام پر پہنچنے کے بعد سب اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جب گھر سے وہ نکلا اور اس نے اپنے کپڑوں کو اتار کے دوسرے کپڑے پہن لیے، لوگوں نے ان کو چھوڑنا چاہا۔ بعض دفعہ لوگ حاجیوں کو بھی محبت میں کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، اسی طرح آپ دیکھیے کہ میت کو بھی چند لوگوں کا کندھا ملتا ہے۔ جب کندھا ملتا ہے تو اس وقت بعض دفعہ لوگ پھول ڈال دیتے ہیں، مرنے والے پہ بھی بعض دفعہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ پھول ڈال دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایئرپورٹ پہ ایک ایسی جگہ آتی ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی پیارا ساتھ نہیں جا سکتا، اور عموماً دیکھیے کہ حاجیوں کے پاس بہت تھوڑا سامان ہوتا ہے، چند جوڑے۔ یعنی میں آپ کو بتا سکتی ہوں اپنی عادت، شاید سیکھنے کی نیت سے بتاؤں گی، کہ جب بھی کبھی حج کے لیے یا عمرے کے لیے اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے تو بہت پہنے ہوئے کپڑے جو آرام دہ بھی ہوں اور جس کے پہننے کے بعد انسان کو تھوڑا سا احساس بھی نہ ہو کہ میرے کپڑے نہ خراب ہوں، اور بوقت ضرورت وہ وہاں دینے پڑیں تو دل پہ بوجھ بھی نہ پڑے۔ میں نے دو سوٹ رکھے تھے گرمیوں کے لان کے، یہ سوچ کے کہ مکہ میں گرمی ہوگی، اور دو شفون ٹائپ کے رکھے تھے جو کہ یہ تھا کہ اگر سردی ہو گئی تو کیا ہوگا، اور دو سوٹ ایسے تھے جس کو فارمل کہہ سکتے ہیں، بہت فارمل نہیں لیکن مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہاں کچھ ایسی گیدرنگز ہوں گی کہ اگر ضرورت پڑی تو پہن لیں گے، یہ ٹوٹل کپڑے تھے ہمارے پاس۔ اب آئے بھی میں نے وہی ایک موٹا بایا، ایک پتلا میڈیم سا، اور وہی رکھے کہ جس میں بالکل ایزی گوئنگ، یہی اسکارف جس وقت بھی میرے سر پہ الحمدللہ یہی اسکارف میرا ایزا پہنچا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ احرام کے حالت میں عورتوں کے دوپٹے اور اس پہ بات کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جب ہم پریکٹیکل بات کرتے ہیں تو اس وقت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ جو ساتھی یہاں دیکھ رہے ہیں، ایک تو میرے اس کے ساتھ بھی احرام یہ لگ گیا، نقاب لگا ہوا ہے، حالانکہ میں نارملی اس کو یوز نہیں کرتی، یہ بس انڈور کے لیے یوز کرتی ہوں، لیکن اگر میں اس کو بھی یوں کر لوں تو یہ بھی ایک پورا نقاب ہے، یہ یہاں بٹن لگا ہوا ہے، یہ آپ دیکھیے ہے، لیکن اگر آپ روز آتے جاتے مجھے دیکھتے ہوں گے تو میں یہ نہیں یوز کرتی، اس کے اوپر یہ میری ایک الگ نقاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس نقاب کو جب نارملی اگر آپ دیکھیں تو یہ نقاب سلی ہوئی ہے، آگے اس کے یہ راستہ سا ہوتا ہے نا کھڑکی سی، اس کو ہم یوں باندھتے ہیں اور جیسے روز پہنتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نقاب ہے، ٹھیک ہے۔ اب احرام کے اندر جو عورتوں کے لیے ایک پرابلم ہے اور جو بہت سیریس مسئلہ بن جاتا ہے وہ کیا ہے کہ احرام کے اندر نقاب نہیں پہن سکتے، یعنی جو سلی ہوئی نقاب ہے یہ منع، اور گلوز نہیں پہن سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے بتایا کہ جب ہم دور کہیں قافلوں میں ہوتے تو پھر تو منہ کھلے رکھتے تھے، لیکن جب ہمارے پاس کوئی قریب سے قافلہ گزرتا تو ہم اپنے چہروں کو چادروں سے چھپاتے۔ اب اس کا حل کیا کریں؟ اب آپ دیکھیں نا، میں اپنے اوپر ہی لوں گی، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے جو سسٹرز ابھی نقاب نہیں کرتی ان کا ایشو نہ ہو، لیکن اللہ کرے کہ جب آپ عمرے یا حج پہ جائیں اس سے پہلے آپ نقاب کر چکے ہیں، تو کتنا مشکل ہے۔ آپ یہاں نقاب کر رہے ہیں اور آپ بس میں بیٹھتے یا جہاز میں بیٹھتے، مجھے یاد ہے کہ ہم چونکہ اس طرح سے گئے تھے کہ یہاں سے ہماری جو فلائٹ تھی وہ شارجہ کی تھی और दुबई और शारजा के रास्ते, यानी जहाँ हमने मीकात में दाखिल होना था, वो शारजा से जद्दा की फ्लाइट थी। तब आप सोचिए कि जहाज़ कितना छोटा होता है, फुल पैक जहाज़, और वहाँ रास्ते में एक ऐसी जगह आती है जहाँ वो उससे पहले ही बता देते हैं कि हम गुजरेंगे, तो आप एहराम की नियत कर लें। अब आप सोचिए कि जहाज़ में बैठने तक तो मैंने फुल ये निकाब किया हुआ है, ग्लव भी पहने हुए हैं, सब किया हुआ है, लेकिन जब वो कहे जी कि अब एहराम की जगह आ गई, तो मैं मुंह खोल दूँ, तो मेरे इधर मेरे उधर वाले वो क्या सोचेंगे, बहुत वेरी बिग हार्ड। तो उसका इलाज क्या है, ये बहुत कम लोगों को पता है, जो इतना आसान तरीका है। यही निकाब देखिए, इसको अगर मैं यूं पहनूंगी ना, लाइक ये देखिए कि अगर ये इसको, अब ऑनलाइन वाले परेशान हो रहे होंगे लेकिन उम्मीद है कि एक्शन से समझ आएगी। ये देखिए, इसको मैं यहाँ जब पीछे बांधती हूँ ना, तो उसके बाद ये इसकी परतें हैं, ये एक निकल गई, दूसरी चली गई, और यूं, ये निकाब है। आम हालात में यूं करते हैं, एहराम में मैंने इसको यूं नहीं किया, मैंने इसको उलट कर दिया। आपको याद होगा पहले दौर में औरतें जो बुर्का पहनती थी, उसमें सर से ऊपर से चादर की तरह फेंकती थी। अब ये देखिए कि ये पट्टी है ना इसकी, ये पहले तो मैं इधर थी ना, मैंने क्या किया उस वक्त, इसी को यूं किया। अब आप देखिएगा क्या होता है, इसमें से वो खिड़की जो है वो पीछे चली गई, यानी ये जो निकाब की कैफियत थी इसकी, सॉरी ये पीछे गया। अब इसके कितने ही पुरुख हैं, ये देखिए। अब ये जो चीज़ है ना, ये निकाब नहीं रही, ये ऊपर से ओढ़नी डालने वाली कैफियत है। और इसको मैंने क्या किया, यूं करके इसको छोटा कर लिया, यूं, यानी इसमें आप इसको ओट कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि सिला व निकाब नहीं है मेरे मुंह पे, ये जब नहीं जरूरत तो उसी को ढीला रखें, लेकिन जाहिर है कि जब सामने ना, इतना इजी ये लगा इस तरह से, ये इसकी इसमें कोई हर्ज नहीं है, जैसे घूंघट निकाल लेते हैं, लेकिन वो होते हैं ना चलने में, सफर में, सामान है उठाने में, वो लटकती रहती है ना। अब ये इस वक्त अगर आप देखें तो ये वो चीज बन गई है जो पहले दौर में औरतें बुरके के ऊपर छोटा बुरका पहनती थी, यानी इसमें सिला हुआ नहीं है, बस इसका एक फेंक लूं या दो फेंक लूं, और जहां ना भी जरूरत पड़े उसको ढीला रख ले, और इसमें से नजर भी आता है, सी थ्रू है ना। अच्छा, फिर इसमें जब नजर भी आता है ना, तो बाज दफा ये भी किया जा सकता है कि लाइक दिस वे, इसको यूं करके ना, तो आप इसको नीचे से थोड़ा सा हाथ से कर ले, यानी बहुत मुझे इजी लगा। जो इस वक्त मकसद बताने का क्या है कि अगर एक चीज़ जो आपको इजीली मिल जाती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन बहरहाल यह कि एहराम पहनने के साथ ही दिल के अंदर एक अजीब सी कैफियत आती है। जो चीज़ मैंने महसूस की वो ये थी कि आज तो मैं अपने हाथों से पहन रही हूँ ना, किसी वक्त भी मुझे पहनाया जाएगा। फिर आप देखिए कि उस कैफियत के अंदर आते ही इंसान एकदम ना चाहते हुए भी अपनी मौत को सोच लेता है। किस तरह से हम उस सफर पे जाते हैं और पीछे हमारा घर है, कपड़े हैं, सब कुछ छोड़ते हैं। जरूर एक दफा तो वक्त ऐसा आता ही है हज उम्रे में कि जब आपका रब्ता दूसरों से कट जाता है। आपके पास आजकल सेलफोन्स भी हैं, सब कुछ भी है, लेकिन इसके बावजूद भी आप अल्लाह के हुक्म से कभी तनहा रह जाते हैं, और इसके लिए बहुत फिक्र नहीं करनी चाहिए हर वक्त। जैसे मेरे हाथ में क्या होता था, जैसे ये फोन नजर है, फोन हमारी जरूरत है, एक पाउच है, बिल्कुल सिंपल सी, वो एक जैसे लेदर की पाउच सी है, पूरा वक्त मेरे पास वो पाउच थी, ये फोन उस पाउच में, पीछे उसके चंद थोड़े से पैसे, और जहां भी अगर रहते हैं अगर उसकी चाबी, आजकल तो कार्ड्स ही होते हैं, यानी टोटल वो पाउच थी, और उसको इंसान अपने पास जिस्म में कहीं भी रख सकता है, हैंड फ्री, एक खाली हाथ का थैला, इतनी आदत पड़ गई कि हाथ में थैला अच्छा लगता है। उसमें एक बिल्कुल सॉफ्ट सी जूती, जिसको आप कह लें कि जहां दिल चाहे पहन लो, दिल चाहे तो उतार भी दो। इतनी आसान जिंदगी, इतना आसान, और यकीन करें कि वही दो जोड़े जो लॉन के थे वही चले। मौसम बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम लोग जो सर्द मुल्कों से जाते हैं तो हमें जरा अच्छा लगता है, थोड़ी सी अगर सर्दी लग भी जाए, सुकून के साथ वही धो के वही इस्तेमाल करके अल्लाह के हुक्म से सफर हो गया। तो जब भी जहां से जाए ना, तो बिल्कुल ये सोच के जाए कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी सफर है। फिर आप देखिए कि बाज दफा इंसान के पास कोई अमानतें होती हैं, कभी किसी को कुछ कहना, लेना देना, तो अमूमन हज और उमरे के मौके पे लोग उससे पहले फारिग हो जाते हैं। ये मैंने पिछले कई सालों से लोगों की आदत आजमाई है, जिसने आपका कई कई साल से देना होता है वो कभी जिक्र भी नहीं करता, वो खुद फोन करके कहता है मैंने जाना है, मुझसे ले ले, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि एक किस्म की जवाबदेही का एहसास होता है। फिर उसके बाद आप देखिए कि जब हम एहराम के अंदर वो सारी पाबंदियां सह लेते हैं जो अल्लाह ताला ने कही हैं, मुझे ऐसे लगता है कि एहराम एक ऐसी कैफियत है कि जिसमें औरतों का ज्यादा इम्तिहान है। आमतौर पे औरतों को पहनने ओढ़ने का मतलब पर्दे का है, एहराम में मर्दों का जिस्म खुला होता है, इतना क्लोज एक्शन। एहराम में आप देखिए कि जब आप तवाफ करते हैं तो आपको पूरा बचना भी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए, लेकिन किसी पे आपकी नजर भी पड़ सकती है किसी पे, लेकिन कोई एक फितना नहीं उठता। आप सोचिए लाखों लोग एक जगह पे, मर्द और औरतों, और मैं पूरा इस वदाल का जो उम्र था ना, मैंने अपने आप को किस नज़र से देखा, नाम नहीं लेती, लेकिन मैं इस ओर से सोच रही थी कि कोई न्यू मुस्लिम सिस्टर अगर हमारे इस जगह पे पहुंचे, अल्लाह के घर में, बैतुल्ला में, तो वो हमें देखकर क्या फील करेंगी, उनको कैसा लगे और क्या रौनत उनके दिल पे अल्लाह ताला की डलेगी। और ज़ाहिर है कि दिल इंसान का खुलता है। फिर उसके बाद आप देखिए कि जो दूसरी चीज़ है हज के साथ ही ताल्लुक के साथ, वो तवाफ़ है। ये देखिए इस वक्त ये मुताफ है, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, सबसे बेहतरीन जगह आज के दौर में, अगर आज इन दिनों में जाएं, कहते हैं कि ये भी मे भी 4-5 साल तक रहेगा ये मुताफ, फिर इसके बाद ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये इन्होंने वक्ती तौर पर रखा है। इसके ऊपर जब आप तवाफ करते हैं और नीचे देखते हैं ना, बिलीव मी के अनएक्सप्लेनेबल किस्म की रौनक पड़ती है दिल पे। और लोग बहुत थोड़े होते हैं, ये अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएं तो एक खास जगह बनी हुई है सफा मरवा के डोर के पास ही, जहां से अंदर जाते हैं। रश भी कम होता है अमूमन, हाँ दिन में अगर करेंगे तो धूप होती है, लेकिन गर्मी इतनी नहीं थी, तो असर से मगरिब या मगरिब से इशा में बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है। यहां से जब आप नीचे देखते हैं, सब एक ही रुख पे फोकस्ड अल्लाह की तरफ, सबकी जिंदगी ऐसे लगता है कि घूम रही है, घूम रहे हैं, हर बंदे को सिर्फ अल्लाह की जात चाहिए। ये तवाफ हमें क्या सिखाता है? कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये 7 चक्कर इंसान की जिंदगी के 7 चक्कर हैं। तुम्हारा हर काम अल्लाह के लिए हो, ये खलूस सिखाता है, ये इखलास सिखाता है, ये इंसान को फोकस्ड होना सिखाता है। ये तवाफ हमें सिखाता है कि दुनिया सारी कुछ भी कह ले, तुमने अपने रब के आगे दीवाने बनना। और आप देखिए क्या ये अकल में आती है बात, ये दीवानगी है, वारफ्तगी है। अकल से पूछें कि एक पड़ा लिपटे हुए काले घर को आप चक्कर लगा रहे हैं, अकल तो नहीं मानती। अकल तो कहेगी ये क्या है, होशियार है, बेवकूफी है, चल चल के पांव सूज जाते हैं। लेकिन इंसान महसूस करता है कि भाई अल्लाह ताला ने जब ये घर बनाया है तो मैं इस घर के चक्कर लगा रही हूं, क्यों? ताकि मेरी जिंदगी का किबला दुरुस्त हो। फिर आप देखिए सब एक रुख पे, घर तो एक है, ये भी तो हो सकता है ना, आधे लोग इधर से शुरू हो जाए, आधे इधर से, आधे लोग अगर मुकामे इब्राहिम के पास से जो डोर है उधर दरवाजे से शुरू करते हैं, तो आधे रुकने यमानी से उल्टा शुरू कर दे। इंची बराबर भी लोग उधर चेंज नहीं करते, लेकिन उस कमरे से, उस घर से बाहर आते ही हमारी जिंदगी के रुख क्यों बदलते हैं? वहां तो कोई नहीं कहता लोग क्या कहेंगे, वहां तो कोई ये नहीं कहता कि लोग किस तरह, खानदान मेरा क्या कहता है, लेकिन असल में अल्लाह ताला यही तो सिखाता है कि ये किबला तुम्हारी जिंदगी का किबला दुरुस्त कर दे। जब कभी आपको मौका मिले तवाफ करने का, तो आप तवाफ के अंदर पूरी फोकस करें। मैं क्या करती थी अमूमन, जैसे 7 चक्कर होते हैं तवाफ के, ऐसे ही सिर्फ एक अपनी याद दहानी के लिए, कोई कुछ रह ना जाए। हालांकि यकीन करें दुआ सिर्फ एक ही जुबान पर रहती है कि अल्लाहुम अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह अपने मेरे गुनाहों को बस माफ़ कर दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी इंसान है, एक तवाफ में रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, माँ बाप का सोच लें। फिर माँ बाप के साथ मेरी आदत है कि मैं अपने भाई बहनों के लिए भी दुआ करती हूँ, तो नीयत उनकी होती है दिल में, लेकिन रब्बिरहमहुमा अच्छा लगता है कि अगर मेरे भाई या बहन को या उनकी औलादों को कोई गम पहुंचेगा तो मेरे माँ बाप को तकलीफ होगी। इस सोच के साथ बहन भाइयों के लिए तवाफ, फिर एक तवाफ आप अपने स्कूल, अपनी क्लासेस, अपने लिए, अपने इन लॉज के लिए, किसी में आप अपनी आदत को बदलने के लिए, किसी में करेक्टर बिल्डिंग के लिए। यानी मैंने इस साल उम्रे में इन्हीं 2 चीज़ों को देखा है। इस दफा में काफ़ी अच्छे कारी जो माशाल्लाह हरम में थे, उनसे कारी हुज़ैफ़ी का आप कितना नाम सुनते हैं, हम जब मस्जिद नबी में गए रात को पहुंचे, बिल्कुल उसके कुछ घंटे के बाद फिर फजर हुई, तो फजर में जब हम गए फटाफट सामान रख के, तो बिल्कुल सहन में हमें जगह मिली और कारी हुज़ैफ़ी की तिलावत थी। इतना अच्छा लगा उनकी आवाज़ सुन के लाइव, और उनके बेटे के घर ये सारे मर्द गए भी, हम तो नहीं जा सके लेकिन वो इनवाइटेड थे। तो इस वक्त मस्जिद नबी में इमाम है कारी हुज़ैफ़ी, और कारी हुज़ैफ़ी के बारे में कहते हैं कि इस वक्त भी जितने भी लोग सिलेक्ट होते हैं मुख्तलिफ मदरसों में सऊदी अरब में, फिर उसके बाद एक टेस्ट होता है फाइनल, जिसमें से वो चूज करते हैं, और उस टेस्ट की जो असेसमेंट है वो कारी हुज़ैफ़ी करते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला ने ऐसे ऐसे इन लोगों को नवाजा हुआ है। फिर उसके बाद आप देखिए कि तवाफ करने के दौरान बार सफा भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं, गिन रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आराम से प्यार से बिल्कुल मस्त बन जाए दीवाने। उस वक्त कोई कि मुझे कोई नहीं जानता, लोग आपके पाँव में पाँव रख के चले जाएं, किसी को आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई धक्का मार के आपको इधर चला जाएगा, कोई उधर चला जाएगा। इसके लिए भी अगर आपको जब भी अल्लाह ताला मौका दे और अल्लाह करे कि आप अपने महरमों के साथ जाएं, बेस्ट थिंग क्या होती है कि आप अपने महरम के साथ रहें। आप देखिए कि बहुत करीब घुसना नहीं चाहिए। आप 3 तवाफ दिन में करेंगे ना, उसकी जगह 1 कर लें। करीब हम इसलिए भी करते हैं ना कि एक तो किसी जगह को हाथ लग जाए और दूसरा यह कि थोड़ा सा छोटा चक्कर हो, आप दूर लगाएं, करीब हाथ नहीं लगेगा। हमने इधर से एक पिक्चर भी है, उसकी वीडियो बनाई हमने, हम ऊपर से देख रहे थे, बड़ा ही खूबसूरत मंजर था। हम असर की नमाज थी गालिबन और उसके बाद मगरिब का वक्त था, तो हम ऊपर तवाफ कर रहे थे तो साथ साथ नीचे वो चाती भी मार लेते थे क्या हो रहा है। हमने क्या देखा कि नमाज से तकरीबन आधा घंटा पहले क्या खूबसूरत तरीके से वो क्राउड मैनेजमेंट करते हैं। मैंने उसको कई जगह पिक्चराइज किया भी कि मैं आपसे भी शेयर करूंगी, इतने लोगों के अंदर लोगों के लिए वो जगह कैसे बनाते हैं। अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा लोग बैतुल्लाह का जो दरवाजा है उसके पास होते हैं, क्योंकि मुल्तजिम भी उधर है और हजरे अस्वद भी उधर ही है पीछे बैतुल्लाह। उन्होंने क्या किया हमें नहीं पता, हम देख रहे थे बस, सब थे कुछ लोग थे जो जाहिर है कि वॉलंटियर्स और वहां के जो मतलब मुतवे होते हैं वो सारे ऐसे इकट्ठे खड़े थे, ऐसे सब खड़े थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो सारे यूं पीछे फैलने लगे और उनके हाथ में रस्सी थी, वो जूं आगे फैले ना तो वो रस्सी जूं लेके चलते गए, लोग उस रस्सी से बाहर खींचते गए, वो मुताफ उन्होंने खाली किया जो जहां पे इमाम साहब आते हैं। फिर क्या हुआ उसके बाद सफाई वाले आए, उन्होंने उस जगह को फिर धोया, फिर उसको वैक्यूम किया। फिर एक शख्स था बड़ी सी जैसे वो पुराने जमाने में सुराखी टाइप चीज नहीं होती जिसके आगे एक नाली सी लगी, वो लाके ना तो उसने सब स्प्रे किया। हम ऊपर तुक्के लगा रहे थे ये कोई खुशबू लगा रहे हैं या ये कोई एंटी वो क्या कहते हैं बैक्टेरियल कुछ भी कर रहे हैं, यानी ऐसे वो प्यार से जगह उनकी धो रहे थे। फिर उसके बाद एक शख्स आया, उसने बहुत बड़ी बड़ा सा खूबसूरत सा मसल्ला बिछाया। एक शख्स आया तो उसके हाथ में ये साउंड सिस्टम था वो रखा एक सजदे की जगह पे, और हम ऊपर खड़े बातें कर रहे थे कि ये किस चीज की इज्जत है। उस वक्त हमें लगे इमाम काबा कोई बादशाह है, वल्लाही मुझे तो वो आयतें याद आ रही थी जहन में कि जो अल्लाह ताला के नजूल की बातें आती है ना कि क्यामत के दिन जब अल्लाह सुब्हान तआला जमीन जमीन पे आएंगे दुनिया में आएंगे तो उस वक्त क्या फील होगा। इतना प्रोटोकॉल, इतना ऑनर, उन्होंने वो जगह खाली करवा दी। फिर लोग पीछे होते गए, हालांकि भी आधा घंटा था नमाज में। फिर उसके बाद जब अजान का वक्त हुआ तो फिर उस मसल्ले पे आके हम ये देखना चाहते थे कि इमाम काबा आते किधर से हैं। फिर वो रास्ता देखा गया कि जहां से वो आए और उन्होंने आके जब वहां फिर ऊपर एक चौका पर एकदम बस उनको लेकर आते हैं, बल्कि हमारा ख्याल था कि उनके सब बहुत सिक्योरिटी और सेफ्टी चीजें होंगी, बाजार कहते हैं लोग, लेकिन हमने ये पूछा जब हमारे इस दफा काफी करीबी लोगों से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कोई किसी की यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, बस हम एक यानी इनको बचाते हैं लेकिन यहाँ कोई पुलिस नहीं है, कोई इमाम काबा के गार्ड नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह किसी का कोई फिक्र नहीं है। इतनी उनको अल्लाह ने इज्जत दी कि वहां खड़े होकर जब उस मसल्ले पे खड़े तो हम भी ऊपर खड़े रो रहे थे कि अल्लाह ये क्या माँ थी। बल्कि आपको मैंने पिछले एक और शेयरिंग में सुनाया कि जब हम कारी सुदेश की बहन से मिले तो फिर हमने उनसे पूछा कि आखिर क्या चीज थी, किस चीज से हुआ, तो कहती हमारे भाई सुदेस बचपन में कभी अम्मी को तंग करते थे तो अम्मी इनको ये कहती जरूर थी कि अल्लाह तुम्हें काबे का इमाम बनाए, लेकिन उस वक्त हमारे जहन में भी ये चीज नहीं थी कि ये इस तरह हो जाएगा। और बिल्कुल यानी ये अल्लाह का चुना होता है, आपके अंदर कितनी भी खूबी हो किसी को नहीं पता, जब अल्लाह आपको चुनता है ना तो फिर वो चुना होता है। फिर उस वक्त जब वहां अजान हुई और मगरिब का वक्त और सुबहान अल्लाह ऐसे लग रहा था कि जैसे वक्त थमता है, एक लहजे में वो तवाफ रुकता है जो सारा दिन चलता रहता है। अच्छा क्या हुआ कि जो उसमें एक दो बड़े दिलचस्प मंजर भी हुए, जब वो जगह साफ कर रहे थे ना तो मर्द तो पीछे हुए ना, ये वो वक्त होता है कि जिस वक्त औरतों को बड़ा लालच आ जाता है कि भाई आगे हम जाए, तो उन्होंने क्या किया कि जब मर्द हटे ना तो ना चाहते हुए भी एक दफा जो मर्द पीछे उठे ना तो उन्होंने औरतों को मौका दे दिया। हम ऊपर से देख रहे थे हजरे अस्वद को चूमने का, तो कुछ औरतें जो वहां खड़ी थी ना उन्होंने ऐसे इशारा किया तो वो औरतें जो थी वो चूमने लग गई। अब क्या हुआ कि वो दे के बाद में उसके बाद वो हिस्सा भी उन्होंने बंद कर दिया। अब आप सोचिए कि लोगों के मुंह में पानी आ रहा होता है कि सारा हिस्सा खाली है और कोई अंदर है नहीं, इतने में क्या हुआ कि पीछे सफ में से एक औरत उठी, ऐसे दीवानों की तरह उठती भागती मर्दों की सफे चीरती हुई गई हजरे अस्वद के पास वहां। और अब आप देखिए कि हम सारा मंजर ऊपर से देख रहे हैं कि इसके दिल में क्या दीवानगी है, ये क्या सोच रही है, लेकिन आपको पता है कि पुलिस वाले ने उसको नहीं लगाने दिया। वजह क्या कि अगर पुलिस वाला उसको इजाजत दे देता तो पीछे 6 और आ जाने, उसने उसको बिल्कुल खाली था उस वक्त हजरे अस्वद। तो कभी अल्लाह आपको ले जाए ये कुछ ना करें। देखिए अगर आपने हजरे अस्वद को बोसा दे भी दिया लेकिन अगर आपके ही नहीं होंठों से हराम जाता है, गालियां बोलते हैं, गीबतें बोलते हैं, तो क्या हुआ? ये तो अल्लाह के नबी ने कहा कि हजरे अस्वद जो जन्नत का पत्थर है इसको बोसा दो, ये तो नहीं कहा कि जिसने इसको बोसा दे दिया उसको जन्नत मिल जाएगी। दिया हजरत उमर फारूक क्या कहा करते थे कि ए हजर तू पत्थर है, मैं तुझे सिर्फ इसलिए चूमता हूं कि मेरे नबी ने तुझे चूमने का हुक्म दिया है, मेरा ईमान है कि तू फायदा नहीं दे सकता, तू नुकसान नहीं देता, नहीं मिलेगा। फिर इसी तरफ देखिए हतीम, हतीम के अंदर लोग हर वक्त रश में। अब सिंपल सी बात है, मैं आपको सिर्फ इसलिए ये सारी बातें कहती हूँ कि जब हम वहां गए होते हैं तो हमारा दिल है कुछ करो, कुछ करना है। अब उसमें जी घर जाके बताएंगे बोला क्या कि हतीम में नफिल ही नहीं पड़े। अब एक रश औरतें मर्दों में गुस्से में। अब आप सोचिए हतीम क्या है? खाना काबा के अंदर का हिस्सा। मानिए आप जरा अपने जहन में लाइए कि खाना काबा के बाहर की तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं ना, अभी भी हम पढ़ेंगे तो किबले की तरफ पढ़ेंगे। हरम में गए तो काबा आगे रख के, आगे था तो हमने पढ़ ली। तो अगर आपने हतीम के अंदर 2 नफिल या 10 नफिल पढ़ भी लिए तो क्या उसका आपके ईमान और आपके अमल और आपके किरदार से कोई ताल्लुक नहीं है? लोगों को एक दफा मौका मिल जाए, मैंने खुद अपने कानों से औरतों की बातें खड़े हुए सुनी कि मिन ते मौका मिल गया फिर मैं तो निकली नहीं अंदरों, ये तो जुल्म की हद है। आखिरी दिन था, मैंने कहा अल्लाह ताला ये क्या हो गया, भला अब अंदर भी नहीं जा रहे? और जो मेरे साथ थे उनमें से मुझे किसने कहा कि मुझे तो आज सुबह मौका मिल गया, तो वो और भी दिल में जलन पैदा हुई। तो जब आखिरी तवाफ करना था मक्का से मदीना जाने से पहले, तो मैं अकेली थी उस वक्त, तो मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह ताला मुझे तो ले जा तो बेहतर है, मैं कोशिश तो नहीं इतनी कर सकती लेकिन तू ले जा। बिलीव मी, पता नहीं कैसे हालात हुए मैं खुद ही अंदर आ गई। अब जब मैं अंदर आई ना तो वहां जाहिर है कि आप अंदर हैं और औरतें वहां खड़ी हैं। अब पांव तो मिल गए लेकिन नफिल कहां पड़े, ना रुकने की जगह ना झुकने की जगह। तो वहां एक औरत थी, मैंने थोड़ा सा इंतजार भी किया, तो फिर मैंने कहा अम्मा जी तुम बाहर निकलो। कहती मैं तो किसले दी बैठी है, आपस में बातें कर रही थी, मैं तो अन्ने नफल पड़े। मैं कह अम्मा जी ओही रब बाहर है ओही अंदर है, तुम दूसरे ने मौका दो। तो उसको मेरी बात पता नहीं अच्छी लगी कि बुरी लगी, लेकिन ये कि लोग वहां जाके बैठते हैं, आप कभी भी ऐसा ना करें। 2 नफिल पढ़े, नहीं पढ़ते जाते वहां खड़े रहे थोड़ी देर, अपने अंदर फीलिंग लाए, स्पिरिचुअलिटी लाए, कहाँ खड़ी हूँ अल्लाह तूने मुझे यहाँ बुलाया है तो मुझे जन्नत में भी ले जाना, कभी काबा के अंदर भी चली जाऊं, बस निकल आए। इन रिचुअल में सिर्फ वो कौमें पढ़ती हैं जो असल मकसद से दूर होती हैं। फिर उसके बाद एक एक जब तवाफ करते हैं तो उसके बाद जमजम, आपको बताया कि तवाफ के बाद 2 नफिल काम इब्राहिम के पीछे पढ़ते हैं और उसके बाद जमजम। जमजम क्या है? जमजम अल्लाह ताला का मौजदा है, ये वो चीज है। मैं सोचती हूँ कि अगर हम जमजम निकलने की हिस्ट्री को सामने रख लेना तो हम जमजम को पीने का मकसद पा ले। दुआ आती है आप लोगों को जमजम को पीने की? नहीं आती। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व अमलम मुतकब्बलम व रिज़्क़न वासियन व शिफा मिन कुल्ली दाइन। लफ्जों के फर्क से दोनों तीनों दुआएं आगे पीछे भी हैं। तर्जमा क्या है कि अल्लाह मैं तुझसे नफा बख्श इल्म का सवाल करती हूँ। नोट तो करें, जमजम पी रहे हैं और दुआ के नफा बख्श इल्म। कैन यू बिलीव, आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं? अल्लाह क्या चाहते हैं हमसे, इल्म भी सीखो और नफे वाला इल्म सीखो, फिर रिस्कन तैयब पाक रिस्क दे। आज जितनी लोग हज और उमरे को जाने की कोशिश करते हैं कि उतनी पाकीज़ा रिस्क को पाने की कोशिश करते हैं। शिफा मिन कुल्ली दाइन, हर बीमारी से शिफा मांगती हूँ अल्लाह तो मेरी दुआओं को कबूल कर। तो जमजम को पीते वक्त जो कैफियत होती है और हर लम्हे हजरत इस्माइल के ऊपर नजरें रहती हैं। मैंने तो जब भी जमजम पिया होगा मेरे दिल से नस्लों के लिए दुआएं निकली कि अल्लाह वो नन्हे इस्माइल की एड़ी को जरिया बना के तूने जमजम जो दिया, तो अल्लाह तो आज इंसानियत, आज भी तो हमारे वही बच्चे हैं, आज भी तो कितने बच्चों का नाम इस्माइल होगा, कितने बापों का नाम इब्राहिम होगा। लेकिन अल्लाह ने मक्का में इस तरह मोहब्बत की दास्तानें खड़ी कर दी। आप मुकाम इब्राहिम पे जाएं तो आपको इब्राहिम नजर आते हैं। एक मौका ऐसा हुआ कि मुझे मौका मिल गया, आपको पता है कि वो आज उन्होंने सोने के केज में डाला हुआ है, पहले कहते हैं खुला होता था लेकिन अब उन्होंने उसकी सिक्योरिटी के लिए किया हुआ है। तो मैं वहां खड़ी देखती रह गई, आपको पता है कि इतने लंबे लंबे पांव इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, और मटने पत्थर पथरीली जगह और उसमें गड़े हुए हैं। मुझे लगा कि एक बंदे की इस्तकामत उसके कदमों को अल्लाह ताला इंसानियत की हिदायत का जरिया बना देता है। बिल्कुल आपको अपने दिल की गहराई से बता सकती हूँ, जितने दिन मक्का में रही मुझे लगे कि इब्राहिम मेरे दादा या मेरे बुजुर्ग हैं, और मैं उनको मिस करती थी, वल्ला ही मिस करती थी कि कहीं मुझे वो खुद भी तो नजर आ जाए। और मैंने काबा को जितनी दफा देखा, मैंने इब्राहिम की नजरों से देखा कि अल्लाह, क्या इब्राहिम ने कभी सोचा था कि इधर इतनी रौनकें लग जाएंगी। आपको पता है कि ये जो नया प्रोजेक्ट है इस वक्त मक्का का, ये बाज़ लोग तो कहते हैं कि 2 साल में पूरा होगा, 2016 में, और बाज़ कहते हैं कि इसकी एक, बल्कि हमें जो मुख्तलिफ लोगों ने जो भी चीज़ें दी, कहते हैं कि टोटल मंसूबा तो ये कोई 10-12 साल का, 2020 में पूरा होगा, और फिर यहाँ 1 करोड़ लोग एक वक्त में नमाज पढ़ेंगे। क्या था वो बंजर, यकीन करें मैंने आप लोगों को इतना याद किया वहाँ, सबको, हर तरफ के साथियों को। तो मैं यही कहती थी कि अल्लाह बस तू हमसे इखलास लेके वो कोशिशें करवा ले, हमें नतायज नहीं देखने, हमारी नस्लें देखें वो भी ना देखें, कुछ नतीजा ना निकले, लेकिन इब्राहिम का इखलास थे, इतना मांगा, इतना। मैं तो गई साल इस नियत से थी कि अल्लाह ताला जो खोट खपट दिल की है उस निकाल के ऐसा किरदार बना दे कि जिसके बाद तेरी मदद आती है। अल्लाह ने उस बंजर घर को बना दिया। और कभी आप जहाज से नीचे, जब आप जहाज उतरता है, कभी आप नीचे तो देखा करें, क्या सुबहान अल्लाह, ऐसे लगता है कि रेत के अंदर अल्लाह ताला ने अपना घर रख दिया। आप जद्दा से नीचे देखें, जद्दा में जब उतरते हैं, निरा सहरा है, कौन मुंह करता था इस रुख का, कैसे अल्लाह ने अपना घर वहां बनाकर पूरी दुनिया के लोगों की नजरें इधर लगा दी। तो आप कोई नेकी छुपके करें, आज आपको आपकी किसी नेकी का कोई रिवॉर्ड नहीं दिखता, एक लफ्ज कोई आपको थैंक यू, अप्रिसिएशन, वेल डन, गुड डन, एक्सीलेंट, शाबाश, बिस्मिल्लाह नहीं कहता, शुक्र करें अल्लाह का। इब्राहिम ने जब ये घर बनाया था, कोई उस वक्त उनको अप्रिसिएट करने वाला था ही नहीं, किस तरह अल्लाह ने उनकी नेकी को कायम रखा। फिर इस्माइल, फिर माँ, एक खानदान का सब्र है। आप देखिए कि आप अगर आज दीन के सफर पे हैं, आज आप सीख रहे हैं, आप में से बहुत सारे साथी अल्हम्दुलिल्लाह जो नॉर्वे से भी सुन रहे हैं हमारे साथ, वो काम कर रहे हैं, पिछले कई साल से उनकी जिंदगी अब स्कूल के साथ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो आपको अपने बच्चों को लाना है, आपको अपने शौहरों को लाना है, क्यों? क्योंकि इब्राहिम पूरे खानदान को लेकर आए थे। कभी आपने सोचा, मैं अभी आपको थोड़ा सा एक नुक्ता देती हूँ, बाद में खुद सोचिएगा। अल्लाह ताला ने इब्राहिम से कहा कि अपनी बीवी को ले आओ, सुना हुआ ना वाक्य, बेटे को भी ले आओ। अच्छा जी, ले आए, फिर वहां छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? अक्ल से पूछिए, क्या तू क्या थी? अल्लाह ने ये घर आबाद करना था ना, अल्लाह कहते मियाँ बीवी बच्चा इधर आ लो, मिसाल है, आप समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात? ये असबाब क्यों थे कि बीवी को लाओ, बच्चे को लाओ, तुम जाओ वापस? भाई बीवी बच्चे को रखा है तो तुम भी रह लो, या अल्लाह ने बात करना था वैसे ही दिलों में डाल देता लोगों के कि वहां आके बैठते। अल्लाह कुर्बानियां और हिजरतें मांगता है। अगर आज मैं कुर्बानी करने के लिए तैयार नहीं हूं, अल्लाह के दीन को सिसकता बिलकता देखूं और मैं कुर्बानी करे बगैर अपनी अना के पुत में बैठी रहूंगी, तो कभी भी चेंजेस नहीं आएंगी दुनिया में कुछ। आप ये तो कहते हैं बहुत खराबी है उधर, ये वो, ये बताएं कि आप उसको कैसे चेंज कर रहे हैं, आप क्या इसलाह की कोशिश करते हैं। तो इब्राहिम और अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइल और बीबी हाजरा ने, तो मैं कहती हूँ कि वो 5 दिन बिल्कुल ऐसे लगता था कि जैसे मैं उनके खानदान का हिस्सा हूँ। और मुझे बार बार रोना है, जैसे मुझे फीलिंग क्या आती थी कि जैसे आप पाकिस्तान जाएं, कि आप अपने किसी प्यारे को मिलेंगे ना, लेकिन आप वहां जाएं भी तो आपको ना मिले। कभी ऐसा होता है ना, आप जा तो चुके हैं लेकिन मिले नहीं अपने किसी प्यारे को, माँ बाप को भी नहीं मिले, भाई बहनों को नहीं मिले, अभी कहते मिलूंगी, क्या फीलिंग्स होती हैं। ऐसी मेरे दिल के अंदर हूक उठती थी कि अल्लाह वो किधर हैं, कभी एक नज़र वो आके देखें कि ये 1 करोड़ लोगों के बैठने की जगह इधर क्यों बन रही है क्या उस जगह, बिकता क्या, बटता क्या। आगे तो रस्तों में छोटी छोटी दुकानें थी बहुत, जब हम लास्ट टाइम गए तो आपने भी देखा होगा कि रस्तों में जब आप नमाजों के लिए जाते हैं ना, इधर उधर थड़ों पे बैठे हुए लोग, कुछ भी नहीं, अब कोई दुनिया दिख ही नहीं। हम तो यही सोचते रह गए कि अब तो यहाँ शॉपिंग की कोई चीज़ ही नहीं, सिवाय वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके जो सबसे नीचे फ्लोर है उसमें भी ज्यादा गोल्ड की और बड़ी कीमती दुकानें थी, कोई दुकानें नहीं दिखी, या तो वो खत्म हो गई हैं या अंदर किसी जगह कर दी, कुछ कर दी, लेकिन एक दीवानगी है नमाजों के वक्त पे। फिर आप देखिए कि लोग, बस लोग बेचारे जो दूर दूर रहते हैं उनको क्या, आप देखिए एक नमाज के बाद आप बाहर निकलते हैं, अल्लाह आपको करीब देता है। हमारा बिल्कुल सामने ही थी जगह, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी आप चाहें तो 5 नमाजों में जाके वापस आ जाए, लेकिन रास्तों में हम देखते थे वहीं फैमिलियां बैठी जमीन पे अखबारें बिछा के खाना रखा हुआ खा रहे हैं। मैं कहती थी यहाँ आके क्या हो जाता है, मैं डाइनिंग टेबल चेयर वो, यानी मैं इतना खुश होती हूँ आजकल किसी वजह से, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी एक्सरसाइज करा दी। दो डिस्पोजेबल प्लेटें, एक ग्लास और दो एक दो चम्मच हो तो आपकी जिंदगी काफी है, ये बाकी सिर्फ और सिर्फ हमारी है ना। आप अगर हज और उमरे से आए और उसके बाद आपकी जिंदगी आसान ना हो तो आप समझे कि आपका फायदा ही नहीं हुआ। वहां तो मस्त मलंग बन जाते हैं, किसी को केयर ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, लेकिन घर आती हमारी फिर आना खुल जाती है, फिर हम कहते हैं अब किधर है वो है। मेरे तो ऐसे लग रहा है कि वही दो जोड़े मेरे लिए बहुत है, मौसम के लिए कपड़े पहनने हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं पहनने। और आप फील करते हैं कि इसके बाद आपके अंदर आती है एक आजी। एक और चीज जिसका अगर मैं जिक्र ना करूं मक्का के नाते से तो मेरा हाल से आती होगी, उसकी भी इधर पिक्चर्स हैं, जनाजे। पूरे सफर में मक्का और मदीना में मुझे सिर्फ एक नमाज याद है जिसमें मेरे कान मुंतजर थे कि फर्ज पढ़ने के बाद जब हम बैठते हैं तो इमाम साहब एक आवाज लगाते हैं, वो पहले बता देते हैं कि आज अब किसका है। आप अगर अब जाएंगे ना तो सुनिएगा, मईता कहेंगे तो एक मैयत है, अमवात कहते हैं तो बहुत सारी हैं, तिफल के तो बच्चे भी हैं। अल्लाह के हुक्म से जहां हम ठहरे थे ना वो बाबे सफा ही से गुजरते, यानी हम जाते थे तो हमारे लिए सबसे बेस्ट डोर बाबे सफा के पास बाबे बिलाल है, उधर से जाते थे। उधर मुस्तशफा है जिसको आप कह लें हॉस्पिटल, बाद में हमें समझ आनी शुरू हो गई थी। बिल्कुल हम जाते ही गिन लेते थे कि आज कितने जनाजे हैं, एम्बुलेंसेस खड़ी होती थी। हमें ये भी वहां के रहने वाले लोगों ने बताया कि मक्का पूरे में कहीं भी कोई बंदा मरता है किसी हॉस्पिटल में किसी घर में तो उसको खाना कबा मिलाते हैं, ये वहां का रूल है। पहले हम सोचते थे, मैं सोचती थी ये कि शायद जो हाजियों में से जो लोग आए हुए मरते हैं उनका है, तो फिर उनकी लाश। और वो वहां से ना अगर आप कभी जाए तो नमाज से आधा को घंटा पहले, अजान से पहले ले जाते हैं अंदर, तो आप देखिएगा सब कपड़ों में लिपटी हुई पूरी मैयत अंदर जा रही होती हैं। सिर्फ एक नमाज ऐसी याद है कि जिसमें कोई मैयत की आवाज नहीं लगी, बाकी हर नमाज के साथ नमाज जनाजा पड़ी है। तो मैं सोचती थी कि अल्लाह ताला यहाँ आके वैसे भी एक नमाज का अजर बढ़ गया, फिर मदीना में गए तो वहां भी एक नमाज हजार के बराबर, लेकिन ये जो एक एक्स्ट्रा नमाज है, आपको कहते हैं ना कि नमाज जनाजा पढ़ने का कितना अजर है, एक किरात का अजर है, तो उसके बाद यह है कि हर नमाज के साथ हमने पढ़ी और आप भी पढ़ें, बहुत आसान है, औरतें भी पढ़ती हैं। उसका तरीका ये होता है कि आप भी सबके साथ खड़े हो जाएं, पहली दफा अल्लाह अकबर कह के इमाम साहब जब अल्लाह अकबर कहे तो उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे आप, फिर दूसरी अल्लाह अकबर के बाद दुरूद शरीफ, तीसरी अल्लाह अकबर के बाद मैयत की दुआएं जो भी पढ़े, अल्लाह मगफिर लहू या अल्लाह मगफिर ली हय्यतना मय्यतना, जो भी पढ़ सके। और मुझे खुशी इस बात की है कि वो बहुत टाइम देते हैं। आमतौर पे हमने कभी अपने मुल्कों में या अमेरिका में इधर उधर कहीं पढ़े तो फौरन फटाफट 2-3 मिनट में सलाम फेरते हैं, लेकिन वो कम से कम 3-4-5 मिनट देते हैं, फिर उसके चौथी अल्लाह अकबर के बाद फिर एक सलाम फेरते हैं। तो बाज़ लोग फिर रहे होते हैं उस वक्त चले जाते हैं, तो मैं सोचती थी ये अपना कितना अजर ज़ाया करते हैं। तो आप भी पढ़ सकते हैं, औरतों को भी मर्दों को भी एक ही जितना अजर है। फिर उसके बाद नमाज जब जनाजा हो जाता था तो नमाज के फिर उसी डोर से उनको लेके जाते थे। तो मैं उस वक्त सोचती थी वो हदीस के अल्लाह के नबी ने कहा कि जिसकी मैयत पे 40 मवाहिदों ने दुआ कर दी, यानी मवाहिद समझते हैं तौहीद परस्त अल्लाह को एक मानने वाले लोग, तो अल्लाह ताला उनकी बख्शिश उनके हाथ में कबूल कर लेगा। यानी ये भी एक किस्म की दरख्वास्त होती है ना कि आप अल्लाह ताला जिंदा के लिए हम कहते हैं ना अल्लाह मगफिर ला उसको माफ कर दे, तो नमाज जनाजा ये कि मरने वाले के लिए करते हैं, तो इतने लोग इनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे वो भी क्या नेकी होगी। दिल चाहे कि अल्लाह ताला बस जब भी तूने हमारा वक्त लाना है हमें मदीना में मारना, क्योंकि हदीस है कि नबी सल्लम की के मेरे शहर में जो मरेंगे उनके लिए इसकी खुशखबरी है। फिर आपको पता है कि मक्का में मौल्ला है, यानी एक जन्नत माला लोग कहते हैं, हालांकि वो जन्नत नहीं है यानी कब्रिस्तान है, मोस्टली फिर लोगों को वहां दफन किया जाता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि और बहुत कुछ है, मैंने दो इससे पहले शेयरिंग की है इसके बारे में, एक हमने लाहौर में की थी और उसमें पूरा मैंने इसको इस थीम के साथ जोड़ा था कि बैतुल्ला का सफर सफरे हिदायत, बल्कि एडमिन्स के पास उसका लिंक है, किसी वक्त आपको भी इधर या क्लास में हम सुनाएंगे, काफी मोटिवेशनल है। फिर दूसरा थोड़ा सा जो हमने अपने हालात के मुताबिक थोड़ा सा आपके साथ किया था, आज मेरा ये दिल था कि हम ये बातें सिर्फ अपनी कहानियां ही ना करें बल्कि इससे अमल की बातें लेना। थोड़ी सी चीज जो हमें इसमें आगे लेके चलनी चाहिए कि जब मक्का में आप सफा और मरवा की सही करते हैं, आप में से कोई ऐसा है कि जो नहीं गया हुआ वो हाथ खड़ा करे? पहले तो ये कि अल्लाह ताला आप लोगों को लेकर जाए। देखिए बैतुल्ला के तवाफ में और कैफियत होती है, पता नहीं क्यों बीच में है ना घूमते रहते हैं, सफा और मरवा की सही अल्लाह हू अकबर। اگر گہرا علم اور گہرا مطالعہ نہ ہو تو سمجھ ہی نہیں آتی کر کیا رہے ہیں، صرف دوڑ لگی ہوئی ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. اور خاص طور پہ جب جاتے ہی آپ کو عمرے کے ساتھ کرنی پڑتی ہے. ہم لوگوں نے فجر کی نماز سے پہلے طواف کیا تھا، پھر فجر پڑھی، فجر کے بعد ہم نے سعی کی اور ساری رات کا سفر اور جو بھی جاتے آتے تھے. لیکن یقین کریں کہ وہاں جا کے بس ایک مستی ہے. جو بھی بی ہاجرہ کے قدم اور ان کے نقش وہاں دکھتے ہیں، میں سوچتی تھی کہ اسلام عورت کو کتنی عزت دیتا ہے. ایک عورت کے نقش قدم پہ دنیا کے سارے مردوں کو چلا دیا، اور اب آپ دیکھیے کہ وہاں بھی اس کی انہوں نے دو تین فلور بنا دیے. ایسے لوگ ہیں وہاں آ کے کہ سبحان اللہ، ایک بس سب لگے ہوئے لگے ہوئے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے بال کٹتے ہیں، یہ مردوں کی قربانی ہے، عزت کی قربانی دیتے ہیں. پورے بال کٹوا دو، یہاں اتنی اپنے ہیئر سٹائلز ہیں، وہاں جا کے بال کاٹ دو. بعض دفعہ بال جب مرد کٹوا کے آتے ہیں پہچانے نہیں جاتے، حالانکہ اجازت تو ہے کہ کتروا لو، لیکن جو پسندیدہ ہے وہ کیا ہے کہ پورے ترشوا دو. یہ پڑھ کے میں نے جو فیل کیا کہ حج کے سفر میں، عمرے میں خاص طور پہ، دونوں میں ہی طواف میں، اس میں مردوں کے زیادہ ریچولز ہیں. ہم عورتوں کی اگر اپنی اسپرچویلٹی نہ ہو تو ہمارے، ہمیں پتہ بھی نہ چلے ہم نے طواف کیا سوائے تھوڑی سی ایکسرسائز کے. پھر بہرحال جو مکہ کا سفر تھا، اس کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدیبیہ کا بھی موقع دیا، اس کی تصویریں اس میں کچھ تھیں. اگر آپ پکچرز کو گو تھرو کرائیں تو میں تھوڑا سا ان کو بتاتی ہوں کہ یہ کیا کی چیزیں تھیں. جی یہ تو وہ جگہ ہے غزوہ بدر ہے، یہ رینڈم کچھ پکچرز ہے، آپ لوگ دیکھ لیجئے. یہ جس میدان میں بدر لڑی گئی تھی نا، جس جگہ پہ باقاعدہ، یہ اس کے اندر گہری کھائی ہے، ادھر یہ جگہ تھی. ایک تو دیکھیں جا کے وہاں جو فیلنگ آتی ہیں وہ تو پھر اور ہی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ تصویروں سے تھوڑا بہت اندازہ ہوتا ہے. بس اب گو تھرو کرائے میں ان کو تھوڑا سا دکھاتی ہوں کہ یہ کون کون سی جگہ. یہ بھی بدر کا میدان ہے، یہ مدینہ کی زیارتوں میں ہوں گے. دیکھیں یہاں جانا کا ثواب سمجھ کے نہیں گئے، جسے ہم جاتے تھے ہمارے استاد ہمیں بتاتے تھے کہ دیکھیں یہ آپ حدیبیہ جا رہے ہیں یا بدر، یہ ثواب نہیں ہے، لیکن ہم علم لینے جا رہے ہیں، عین الیقین ہے. جیسے ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں تو ہمیں زیادہ فوکس ہوتا ہے نا کچھ پڑھتے ہوئے، تو یہ اب ہم خود وہاں آئے ہیں، دیٹس اٹ. یہ زیارتیں کوئی ثواب کا حصہ نہیں ہے، صرف یہ ایک علمی سفر ہوتا ہے. کعب بن اشرف کا نام آپ پڑھیں گے، سیرت کا کورس آپ نے کیا اگر تو اس میں ایک یہودی دشمن تھا بہت بڑا اللہ کے نبی کا، تو اس کو مروانے کا اہتمام کیا تھا. آج تک اس کا جو قلعہ ہے اس کی بنیادیں موجود ہیں، پتھروں کے اندر ہیں. اور آگے کریے اس میں تھوڑا سا دکھاتے ہیں. یہ وہ مسجد عریش ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پہ کھڑے آہوزاری کر رہے تھے، اور ابو بکر اللہ کے نبی کو تسلیاں دے رہے تھے کہ آپ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آج انہوں نے وہاں مسجد بنا دی. یہ وہ دیکھی شہدا کے نام ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیے. میں جب ان کو دیکھ رہی تھی تو 14 لوگ شہید ہوئے تھے ٹوٹل غزوہ بدر میں، اور یہ ان سب کے نام وہاں انہوں نے کتبے پہ لکھے ہوئے ہیں. میں سوچ رہی تھی، اب آپ بھی اس کو غور سے دیکھیے، پہلی جنگ ہے، یہ سب گئے، نہ احد دیکھی نہ خندق دیکھی، کچھ نہیں، انہوں نے تو اسلام کا کوئی رخ ہی نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے ان کو اسلام کی بنیادوں میں ڈال دیا. یہ عبیدہ بن حارث جو ہیں، یہ راستے میں جا کے ڈیتھ ہوئی تھی ان کی، یہ شروع میں زخمی تھے لیکن چلے گئے. آج انہوں نے ان کے نام وہاں لکھ کے لگائے ہوئے ہیں. یہ تو وہ تھے جو شہید ہوئے ہیں، لیکن جو زندہ رہے اللہ نے ان کے لیے کہا کہ آج کے بعد تم کچھ بھی نیکی نہ کرو تو تم جنتی ہو. تو یہ وہ آنر ہے جو ملتا ہے کام کرنے والوں کو. یہ بھی راستہ ہے، یہ بدر کا راستہ ہے. یہ مسجد نبوی ہے، اگر آپ دیکھیں تو اوپر اس وقت بادل ہے اور اس میں پیچھے تھوڑا سا سورج ہے. ویسے جو مسجد نبوی کو جا کر دیکھ کر ایک ٹھنڈک اور سکون کا احساس پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ کیا ہوا کہ خانہ کعبہ میں بہت زیادہ کنسٹرکشن تھی، تو وہ جیسے مائنڈ ڈسٹریکٹ نہیں ہوا تھا، جہاں بیٹھتے تو اس کے آگے سامنے 10-12 کرینیں لگی ہوئی تھیں اور وہ ٹھک 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 چلتا رہتا ہے. مسجد نبوی میں آ کر ایسے لگا کہ بس ایک سکون کا سانس. جس طرح مکہ میں حضرت ابراہیم یاد رہے، اس طرح مسجد نبوی میں آ کے میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک آپ کہیں جسمانی قربت نہیں محسوس کی جو میں نے اس دفعہ مدینہ میں کی. میں کہتی تھی فار فزیکل بینگ اللہ کے نبی کا وجود ادھر ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ نبیوں کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، اللہ کے نبی کا روزہ موجود ہے. پھر میں سوچتی تھی اللہ کے نبی کے دور کی مسجد اور آج کی مسجد، دیکھیے کیا شان ہے، اتنی خوبصورت طریقے سے مسجد کو مینج کیا ہوا ہے. باہر وہ جو چھتریاں لگائی ہوئی ہیں، آپ لوگ جا کے دیکھیں گے جب دن میں اس کو کھول دیتے ہیں، عصر کے اور مغرب کے بیچ میں اس کو بند کرتے ہیں، तो वो इतने खूबसूरत से फानूस से बन जाते हैं खड़े, और उसके बाद वहां पे रात को खुली रहती हैं। तो बहुत ज्यादा दिल को खुशी भी होती थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में क्या था। जो मुझे यहाँ से आपके और अपने लिए मैसेज मिला वो यही मिला कि आप अगर आज किसी सफर के आगाज में है ना, तो इरादे बड़े रखें, नीयत ठीक रखें, बाकी सब कुछ अल्लाह पर डाल दें। आपको मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन कल आने वाले दिनों में क्या होगा इसमें अब आगे जो पिक्चर्स आप देखेंगे, ये हमने वेबसाइट पर डाला है, फेसबुक पे भी हैं और भी डाल देंगे, इसमें वीडियोस आप देखिएगा, बल्कि इसमें मेरे पास तो सारी हैं इधर, लेकिन अब कंप्यूटर्स के साथ है, वो वीडियोस पूरी उनकी जो हमारे साथ स्कॉलर्स थे उनकी थोड़ी थोड़ी क्लिप्स भी रिकॉर्डेड है। जैसे बेरे उस्मान पे थे, ये वो उस म्यूजियम में जहाँ हम गए थे जहाँ पूरी हिस्ट्री है, जहाँ आपको बताया था कि नबी सल्लम की वफात से बिल्कुल करीब ओनली 35 ईयर्स, शायद 55 और 65 ईयर्स हिजरी के जब थे, तो उस वक्त जो पिलर था वहाँ वो वहाँ मौजूद था। फिर हमें वहाँ उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बताई, और आपने पढ़ी होगी पहले भी, लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा नहीं पता था, कि जब नबी सल्लम मदीना में आए तो कुछ भी नहीं था, टूटा फूटा छप्पर डाल के मस्जिद बना दी, तो वहाँ एक दरख्त का तना था, तो उसको टेक लगा के अल्लाह के नबी खुतबा दिया करते थे। तो एक सहाबिया थी, फिर वो अपने बेटे को लेकर गई और उन्होंने अल्लाह के नबी का मिंबर बनवाया, तो वो मिंबर वहाँ रखा। उससे अब सऊदी अरब के जो भी लोग हैं जो जानते हैं वो कहते हैं कि एक साइड इशू से मसला ये निकलता है कि जब भी कोई मस्जिद बने तो उसका जो मिंबर है वो औरतें बनवाएं, मिंबर और उसका जो वो था। फिर उन्होंने हमें बताया साथ ने कि एक एक औरत का नाम बताया, ये सारे नोट्स भी लिखे हुए हैं मेरे पास, कभी मिले तो आपको डाल दूंगी वेबसाइट पे। तो वो कहते हैं कि उसके बाद एक औरत थी तारीख में ऐसी गुजरी कि जिन्होंने अपना माल सिर्फ इसलिए डिवोट किया हुआ था, कहती थी शहर में जहां कोई मस्जिद बनेगी उसका मेंबर मेरी तरफ से डाले। और जो मेंबरों के जब मेहराब होते हैं ना, कहते हैं ये एक सुन्नत रही है अरब में, सऊदी अरब में कैसी चीजें जो हैं छतें और मेहराब ये औरतों के पैसों का डलता है। अल्लाह कितनी इज्जत देते हैं। ये भी खाना काबा की कुछ हिस्ट्री है पीछे की। ये वो म्यूजियम है जहां हम गए थे, ये वो जगह है जहां पे खाना काबा का गिलाफ बनता है। ये अगर आप देखें तो ये काले रंग का कपड़ा बुन रहे हैं, वो नीचे जो आपको दिख रहा है खड्डियां सी हैं, तो इसकी बल्कि वीडियोस में भी आप जाके देखिएगा तो उसमें आपको एक दिखेगी कि किस तरह वो मेहनत से बनता है। जी नेक्स्ट, ये है वो ऊँटों का बाड़ा जहाँ हम दूध पीने गए थे, और इसकी भी वीडियोस मौजूद है, लेकिन ये एक दूर की पिक्चर है। तो इस ही उनकी जिंदगी है, बल्कि वो मैं इसमें देखिए वो उनके सोफे की भी खींची थी। ये वो कुआं जहाँ हुदैबिया के मुकाम पे एक कुआं था, जहाँ ये उसकी तस्वीर है। ये देखिए ये भी हुदैबिया का, हम जब गए तो ऊपर चढ़ रहे थे, और ये बिल्कुल उन्होंने उसकी असल यादगारें जो है ना वो उन जगहों की रखी हुई है। ये वो जगह है जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत दावा सेंटर एक हम गए थे, जिसमें वो बहुत ही अच्छे तरीके से नॉन मुस्लिम्स को दावा के लिए तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं इसकी। इवन वो ये बाहर के मुल्कों में भी अपना दावा मटेरियल भेजते हैं, और इनका फोकस नॉन मुस्लिम्स हैं, और काफ़ी लोगों को इन्होंने इस्लाम की दावत दी है। जी आगे करिए। बहरहाल ये है कि ये सिर्फ आपको एक सोच देना है, मकसद सिर्फ कहने का ये है कि जब भी वहाँ जाएँ तो आप इल्म लेकर जाएँ, अमल के साथ जाएँ, इल्म लेकर जाएँ। और मस्जिद नबी के नाते से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जितनी हमें मक्का में जाकर इल्म की ज़रूरत होती है तो है, लेकिन जो मदीना के सफ़र में इल्म की अहमियत है ना, बिलीव मी कि लोग अपना उम्रा ज़ाया कर देते हैं वहाँ जाके जो कुछ होता है। औरतों को बिल्कुल बेचारियों को समझ नहीं होती किस तरह करना है क्या करना है। अब तो वैसे काफ़ी कंट्रोल उन लोगों ने किया, वो करने भी नहीं देते। मुझे याद है मैं लास्ट टाइम जब गई, तो आप अगर मेरी तरफ देखें तो सामने किबला है और इस तरफ नबी सल्लम का रोज़ा है ना, तो वो औरत इधर खड़ी होकर दुआ मांग रही थी इस तरफ मुंह करके, हालांकि शायद वो दुआ मांग रही थी, लेकिन वो जो बीच में उनकी औरतें होती तो वो उसके हाथों पे इस तरह स्टिक से कर रही थी, इधर मांगो अल्लाह से मांगो। तो वहाँ हमारे अपने मुसलमानों का साथियों का शिर्क बहुत ज़्यादा झलकता है, और हमारे मुसलमानों के अंदर ये चीज़ मौजूद है पाकिस्तानियों में स्पेशली, कि बग़ैर इल्म के वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके बहुत कुछ मतलब फिर गलत काम करते हैं। सारे सफ़र में से जो चीज़ मैंने समझी वो ये समझी है कि अगर हम किसी भी काम को नंबर एक अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए, देखिए ये कहना बहुत आसान है और आप कहेंगे कि हम थक गए आपके मुंह से ये बात सुन के, इखलास अल्लाह के लिए, लेकिन क्यों नहीं, ये क्या इतना अहम है, ये कैसे पता चलेगा। मिसाल है कि मैं कोई काम सिर्फ अल्लाह के लिए कर रही हूँ कि नहीं, कोई सिम्टम्स हैं, हाँ बहुत सारी हैं। नंबर एक, कोई करे ना करे मैंने करना है, कोई देखे ना देखे मैंने करना है। तीसरी चीज़, उसका कोई नतीजा बजाहर निकले ना निकले, मैंने वो काम करना है। नंबर चार, उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, मैंने देनी है। और उसके बाद कोई बहुत फूलों के हार गले में डाले तो डाले, मुझे इससे परवाह नहीं। आपको अल्लाह ने अगर ये काम दिया ना, आप करें। मिसाल आप देखिए कि हम सब इस क्लास में आते हैं ना, आज आप आए हैं, बिलफर्ज आप यहां आते, कोई भी ना होता आपके सिवा, सिर्फ आप अकेली हैं, तो क्या मैंने करना है? अगर मैं यहां आपसे बात करने आई हूं ना, अगर आप में से एक भी यहां के ना बैठता, तो मैंने बात करनी थी। क्यों करनी है? क्योंकि अल्लाह के लिए करना है। आप इस तरह हजरत इब्राहिम की तन्हाइयों में की हुई नेकियों को आज कैसे सफ़े किरदार पे बरसता हुआ बिखरा हुआ देख रहे हैं ना, अल्लाह आपकी नेकियों को भी लेके आएगा। दूसरी चीज जो मैंने इस सफर से बहुत ज्यादा सीखी है, वो सीखी है टीम वर्क। इसमें एक वीडियो आपको कहीं नजर आई तो जरूर देखिएगा, क्लीनिंग। मैं सफा मरवा की सही के दौरान देख रही थी कि हम एक तरफ थे तो दूसरी तरफ से वो सफाई कैसे करते हैं। लड़के होते हैं वो भी सेम ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं, और वो बीच में, अब इतने क्राउड को आप रोकेंगे कैसे? आप देखना हमारे अपने घर में सफाई होती है ना, तो बच्चों की शामत आई होती है, पीछे हो जाओ, पाओ ना, इधर करो, आना नहीं, मैं झाड़ू फेर रही हूँ, पानी है वहाँ, पानी भी होता है वहाँ, सब कुछ होता है, सर्फ भी होता है, लेकिन वो इतने खूबसूरत तरीके से करते हैं कि बिल्कुल वो भी इस तरह रस्सी डाल के ना ऐसे बिखरते हैं। तो जब वो बिखरते हैं ना, तो वो फिर उतनी जगह खाली होती है। एक पानी डाल रहा था, आपको दिखेगी तो आप इंजॉय करेंगे, मैंने पूरा मंजर खड़े होकर उसको पिक्चराइज किया कि जब फर्श इस तरह साफ हो सकता है टीम वर्क से, तो लोगों के दिल क्यों नहीं साफ हो सकते, और माशरे में पहली भी गंदगी क्यों नहीं साफ हो सकती। उन्होंने उसको धोया भी, पानी भी उसका निकाला, फिर पीछे उसके पानी खुश कपड़ा भी एक बंदा मार रहा है, और उसके साथ साथ अगलों को बचा भी रहा है। वो सीधी रो में आते जाते हैं, एक हिस्सा करते जाते हैं, फिर पलटते हैं तो वापसी पे दूसरा। बहुत खूबसूरत तरीके से टीम मैनेजमेंट है। मुझे लगता है दुनिया का बेहतरीन क्लीनिंग का निज़ाम मक्का और मदीना में। और ये जिन्होंने हमें बताया कि 2020 में ये पूरा हो जाएगा, उन्होंने साथ ये भी बताया कि 2020 के बाद मक्का और मदीना पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड सिटी होंगे। पूरे इनके प्लान हैं, और इन्होंने इस वक्त ये जो कुछ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है इस वक्त जो हमें दिखती भी हैं, कहते हैं ये सब गिर जाएंगी, और इन्होंने इसको एक प्लान के साथ बना के किसको रखा है। तो डिसिप्लिन, टीम वर्क, ऑर्गेनाइज, सिस्टम को फॉलो करना, यही है वो बुनियादी चीज़ें जो मुझे लगता है कि जिंदा कौमों को जिंदा करती हैं। और दुआ कीजिए कि हम मुसलमान जो वहाँ जा के आते हैं, फिर उनको वहाँ से ये चीज़ें वापस भी नसीब हो। अब चंद मिनट जो हैं हमारे पास, मैं चाहूँगी कि आप में ऑनलाइन में जो भी कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न, कोई बात जो मैंने नहीं कही और ज़रूरी है कहनी, मुझे याद करवा दें, आपका वक्त है, आप लोग शेयर कर सकते हैं, या कुछ नहीं तो कुछ वैसे बता दें कि आप क्या फील करें। जी आप प्लीज़।
कल मैं पढ़ी थी एक मैगजीन में, जैसे अभी हम देख रहे थे, और अल्लाह ताला का वो अजमत और हैबत और कुदरत और जो भी आप नाम देंगे, एक अजीब सा एहसास होता है देख के। और जब फर्स्ट टाइम गई तो अल्हम्दुलिल्लाह बयान से बाहर है, जो आप बोल रहे थे ऐसे लगता था कि साथ साथ ही हैं। और ये भी नहीं समझ आती कि शायद पहले भी मैंने कहा कि ये नात ख्वां भी जो बोलते हैं ना कि मदीने की ठंडी हवाएं और मदीने का सुकून, ये चीज आज भी मैं अगर आपकी बातों के साथ चल रही थी, सोच रही थी कि खाना काबा में एक दिल में हैबत, एक अजीब सा एहसास फील होता है, एहसास बरतरी का और अल्लाह ताला की शान का। लेकिन मदीना में जाके एकदम से ऐसे लगता है कि जैसे हम मिट्टी हो गए हैं, ऐसे लगता है कि आई डोंट नो, मुझे एक्सप्लेन करने का स्पीचलेस इंसान हो जाता है कि उसकी हवाओं में नरमी है, उधर की मुझे अजान में नरमी लगती है, उधर की किरत में मुझे नरमी लगती है, उसकी फजा में ऑन द होल जैसे कोई अपने सीने से लगाने वाली बात होती है। और कल मैं एक मैगजीन में पढ़ी थी कि ऑस्ट्रेलियन कोई साइंटिस्ट थे स्पेस से रिलेटेड, तो वो मदीना यूनिवर्सिटी मक्का गए, और वहाँ पे उन लोगों ने जब अपनी रिसर्च वगैरह की तो उन्होंने वहाँ पे ये अपना थीसिस लिखा, तो उसमें उन्होंने बताया कि हमें सबसे ज्यादा ये हमें वंडर ऑफ द वर्ल्ड हमें फील हुआ कि ऊपर से जब आप रात के टाइम नीचे देखते हैं तो उनको लाइट्स की, फ्लैश लाइट्स की, दूरबीन की जरूरत होती है चीजें देखने के लिए, सिटीज कुछ नजर नहीं आता, लेकिन स्पेस से वाहिद एक चीज मक्का और मदीना के जो जगमगा रहे होते हैं वो रात के वक्त भी ये दो सिटीज जो है वो नजर आती है।
अल्लाह की जगह है जाहिर है कि अल्लाह ने पूरी दुनिया का मिडल है, यानी अगर आप एक पूरी दुनिया के बीच में एक दायरा बनाएं तो वो न्यूक्लियस जो है वो मक्का और मदीना है। तो ये अल्लाह की बात है। ये लिखती हैं कि इन्होंने पहला सुना होगा कि हजरत उस्मान की वक्फशुदा जगह पर आपने क्या नीयत की, आपको क्या फ़ायदा होगा मेरी नीयत सुन के। लेकिन हकीकत है, मैं आप में से कुछ साथियों ने मिस किया होगा, लेकिन बिलीव मी के मेरे दिल की अजीब हालत थी। हम जब बेरे उस्मान पे गए, एक कुआं है आज भी, उसकी सारी चीज़ें वहाँ खड़े होके जो उस्ताद थे उन्होंने हमें पूरी उसकी हिस्ट्री सुनाई, मैंने पढ़ी हुई थी पहले अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ने दोबारा उनसे सुनी कि किस तरह से हजरत उस्मान के दौर में जब फितने आ गए थे तो फिर वो उनके हाथ में जो एक अंगूठी थी जिसको उस वक्त की कार्रवाई के लिए यूज़ करते थे, वो अंगूठी उसमें गिर गई थी। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी थी कि अब खिलाफत का दौर ख़त्म हो रहा है। तो उसके बिल्कुल बाजू में एक जगह है जहाँ खजूरों के भी दरख्त थे, तो उन्होंने बताया कि ये बाग हजरत उस्मान ने वक्फ किया था अपने हाथ से अल्लाह के लिए, और आज भी उनके नाम का बैंक में अकाउंट मौजूद है, और इस बाग की पूरी आमदन जो है वो वहाँ लगाते हैं, रखते हैं, और अब उस पैसे से हरम की खिदमत होती है। आप देखिए पूरे हरम में एक डोनेशन बॉक्स नहीं आपको दिखता। ये चीज़ तो मैं पहले भी बहुत दफ़ा कहती हूँ, इस दफ़ा मैंने इतना इसका तذکرہ नहीं किया। इतनी शान का वो घर है, कोई नहीं, आप पूछें किसी से तो आपको कोई मौका मिले तो मिले। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सामने क्लॉक टावर है, मलिक अब्दुल अजीज़ की तरफ से, उनकी तरफ से वक्फ है, इसकी पूरी आमदन जो है वो हरम में जाती है। दोबारा उन्होंने कहा कि उनके पैसे से फिर वो जगह जो है मक्का में अब एक जो खरीदी गई है और वो सारा बैत महरम पे लगता है, और अभी भी उसमें पैसा है। उस वक्त वाकई फिर रिया बा पूछ रही हैं, तो मैंने तो अल्लाह से भी पूरी नियत की और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बात भी की कि मुझे बताएं कि हम यहाँ रहने वाले क्या कर सकते हैं कि हमारे लिए भी अकाउंट, और इंशाल्लाह जो ही मुझे पता चल गया तो आपको भी बताऊंगी। तो मैंने तो फौरन नियत की कि मेरे पास जो कुछ भी ऐसी कोई चीज़ है, ज़ाहिर है कि इंसान के पास अपने माँ बाप से भी बहुत कुछ होता है, औरतों के पास तो दो ही ज़राए हैं ना, एक माँ बाप और एक शौहर। तो मैंने नियत की कि जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगेगी मैंने उसको बेच बाच के तो मैंने यहाँ कहीं देना है, कि आप इसको कुछ भी करें बस ऐसी जगह डाल दें कि जो ग्रो होता रहे और मुझे पता ना चले चले, और हमने कहाँ इंतज़ाम कर सकना है, लेकिन बस कोई हमारा कबूल करे। ऐसे लग रहा था कि कोई बस हमसे ले और कबूल कर ले, ऐसे लगता है कि हर एक का तो अल्लाह कबूल भी नहीं करता, चलो भागो तुम क्यों, तुम्हारे पैसे मैं क्यों लगाऊं। वरना आप देखिए कि जितना मुसलमानों में दीन पे लगाने का शौक है, हम सब तो सारा छोड़ के वहीं लगाएं, ये भी एक हिकमत है, वहां क्यों नहीं है। फिर जैसा पैसा होगा, किसी का शुबे वाला पैसा है, कितने फितने होंगे, वहां पैसा भी उन्हीं लोगों का लगता है कि जिनके माल को अल्लाह कबूल करता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो हमें खलूस दे दे, इतने बस ऐसे काम करने वाला दे दे कि ऑन गोइंग चीजें, और जो हम सबको अल्लाह के साथ जोड़ दे। ये लिखती हैं कि हज का इरादा है, आप बताइए, बताई हुई टिप्स वहाँ काम आएंगी और कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बात का मकसद भी यही था कि मीठी मीठी बातों से बेहतर है कि हम फिर इल्म की बातें कर लें। और ये लिखती हैं, एक और कमेंट है, फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम इजाज़त लेते हैं। जैसे मैं आपके साथ थी उस्ताजा जी, ऐसे तो वहाँ जाकर भी महसूस नहीं किया जैसे आज लग रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल इस तरह से इन चीज़ों को लेते रहें, और जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जो मैं आपसे आखिरी बात आज के तौर पे कह दूंगी, कि मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र कर रही थी कि मेरा पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक़ है, और वहाँ बैठ के वो बहनें जो बेचारी मोहब्बत में इतना कुछ करती हैं, मैं औरतों की बातें भी सुनती थी, ऐसी तो सुबह आ जाने हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जो सुबह आ जाते हैं वहाँ रहते हैं, और बीच में जोहर और फजर के बीच में थोड़ी देर जाते हैं, फिर जोहर से असर, फिर मगरिब से ईशा, पूरा वक्त हरम में रहते हैं, और मतलब उनके पास करने को कुछ नहीं होता। लेकिन मैं सोचती थी कि कोई बंदा ऐसा हो जो इनको थोड़ा सा मौका दे, कोई बात का मौका हो, कुछ ये करें। फिर हमारे पास थोड़ी सी सीडीज थी, फिर हमें सबसे खूबसूरत चीज़ ये कि मदीना में जो औरतों की लाइब्रेरी है उसके अंदर भी एक मीटिंग थी, जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ जाके मैंने थोड़ी सी उर्दू बुक्स देखी, और पाकिस्तानियों के लिए भी उन्होंने काफ़ी बनाए हुए, मेरा मुझे लगता है कि उनको भी पता चल गया कि पाकिस्तानियों को इल्म की बड़ी ज़रूरत है। तो उन्होंने पूरा मस्जिद नबी में 25 नंबर जो डोर है उसके साथ सब जगह है, ऊपर इन्होंने पूरी एक जगह बनाई हुई है, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई दावा मटेरियल है, वहाँ जाएं। तो आप जब भी कभी जाएं ना, तो बाजारों में घूमने और खाने पीने सोने की बजाय ये चीज़ें ढूंढें। फिर इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ जो याद आ गया तो बताऊं कि डोर 25 के बाद अंदर जाएं तो राइट हैंड पे आपको काले रंग का एक पार्टीशन दिखेगी, उस पार्टीशन के अंदर पूरा दिन वहाँ कुरान की क्लासेस चलती हैं। कोई भी अपनी अरबी ठीक करना चाहता है, तजवीद कुरान की वो सुनाते हैं। और हमारी एक सिस्टर ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो शाम के वक्त कभी कहीं गई तो कहती है कि अनबिलीवेबल किस्म की वो तफसीर तजवीद की क्लास थी वहाँ, जो वहाँ की सिस्टर्स ले रही थी। तो वॉलंटियरली आपको, मुझे सबको कहते हैं कि आप आएँ और अपना कुरान सुनाएं, सीखें। तो अगर आप देखिए, अगर 8 दिन के लिए मदीना गया और 8 दिन रोज़ आप जाके वहाँ 1-2 घंटा सुनाएं, तो तोहफा लेकर आएँ अपनी तजवीद की बेहतरी का। تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وقت پورا ہو گئے, جو کمنٹس ہیں سب کے وہ پڑھ لیں. جو یہاں کی لیڈی کنگ ہیں, یعنی جو مطلب کوئی ان کی شاہی خاندان کی کوئی لیڈی, ان کے تھرو ان کو اجازت ملی ہے, کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ہم جیسوں کو کون جانتا ہے, وہاں ہماری کیا اوقات ہے نا. تو اس میں کچھ حد تک تو لوگ جاتے ہیں, لیکن ہر ایک جگہ نہیں جانے دیتے. لیکن جو دل کی کیفیت اس میوزیم میں جا کے میری بدلی تھی, بلیو می, کیونکہ وہ ہسٹری سے پیار ہے. یہ حضرت ابن عباس کے دور کا یہ ستون تھا, ایک بالکل وہاں سے ووڈن سا اتنے کو سائز کا لکڑی کا تنا تھا اور اس کے اوپر کچھ تھا. تم دیکھ کہ یہ 65 ہجری کے وقت ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر یہ ایز اے پلر یوز ہوتا تھا. تو وہ پھر ایسا دل کرتا تھا کہ ان چیزوں سے باتیں کریں, کہ تم نے کیا کیا نہیں دیکھا ہوا ہسٹری کا. وہاں وہ پورا ڈور بھی ہے جو اس وقت تو جو آپ کو تھا کہ یہ سونے کے تاروں سے بنتا ہے نا, تو جو پچھلے پرانا تھا وہ سب کچھ ہے. یعنی بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پوری مسلم ہسٹری اس میں آپ کو دکھتی ہے. بالکل مدینہ کا آپ دیکھیں, مکہ سے جو مدینہ کا سفر ہے تقریباً, ویسے کہتے ہیں 6 گھنٹے کا, لیکن ہمیں جو وہ لے کے گئے تھے پرائیویٹ گاڑی تھی, کوچ تھی, اور ہمیں ایسے لگا کہ پلکوں میں جھپکتے ہوئے سفر چلا گیا. اتنے کوشچن آنسرس میں نے, بلکہ وہ نوٹس منگوائے ہیں, مجھے جب مل جاتے ہیں تو میں آپ کو ایز اٹ از وہ ساری سنا دوں گی جو ہمارے کوشچن آنسرس ہوئے. اور جوکس ہمیں, میں تو دین کے نام پہ آپ یہ مت سوچیے کہ سارا ہو کر روتے ہی رہتے ہیں لوگ. جو ہمارے ساتھ استاد تھے انہوں نے ہمیں اتنے علماء کے جوکس اور جو علمی باتیں ہوتی تھیں اس نے یہ کہا وہ سنائے, کہ ہم اتنے خوش ہو رہے تھے کہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت زندگی ہوتی ہے علم والوں کی, دین والوں کی زندگی, کہ جس کے اندر مزاح بھی ہے, اچھا بھی لگتا ہے اور جھوٹ بھی نہیں ہے. پھر اس میں ہم لوگوں نے وہ, میں جب ان راستوں پہ تھی تو میں بالکل دل کے عجیب حالت تھی کہ ہم کتنے آرام میں, اے سی گاڑی میں, اور کھانے اور پینے اور سنیکس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تھے تو کیا تھا, اور ان کی جان کی تو قیمت لگی ہوئی تھی. تو پھر وہ رونا آتا ہے کہ اللہ ہمارا ایمان ہی اتنا ہے, بس تو ہمیں اس میں ہی لے آئے, تیری یہی بڑی مہربانی ہے. آج بھی میں نے انہیں کہا کہ اگر وہی رستے ہوتے ویسے ہی چھوڑ دیتے جیسے تھے, تو کتنے لوگ تھے جو آتے ہم میں سے نرم گرم سفروں کے عادی ہیں.
جی شیئر کرنا چاہوں گی, جب 2007 میں میں گئی تھی تو یہ جو حضرت عثمان کا کنواں, یہ سب چیزیں میں نے بھی دیکھی تھی. اور اس وقت تو خیر علم نہیں تھا, تو اس طرح نے جو جہاں شراب کا حکم آیا سب بیٹھے تھے, کیونکہ ہمیں ٹرائیور مل گئے وہاں کے رہنے والے, تو میں نے پورا جو ہے ٹور کیا تھا. تو جب ہم مدینہ جا رہے تھے رستے میں, تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ابھی ہم گزر رہے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امی ہے وہ یہاں نزدیک
ابوا کے مقام پہ جو,
ہاں جی, اور وہاں پہ اکثر جو ہے بادل کا ٹکڑا رہتا ہے بارش. اور اب جب ہم واقعی گزرے سادہ جی, تو اس وقت صرف اس ٹکڑے میں پوری دھوپ تھی اور اسی حصے میں بس بارش
تھے. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ بس ہم سب کے عمل اچھے کر دے. یقین کریں جو چیز قرآن کی کلاس, یہ دین, یہ محبت, یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے. یہ تو میں کبھی بھی نہیں کہہ سکتی آپ کو کہ اگر آپ نے حج نہیں کیا یا عمرہ نہیں کیا تو آپ بڑے قابل رحم ہیں. یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ نے قرآن کی لذت نہیں لی تو آپ قابل رحم ہیں. حج اور عمرہ بھی تبھی مزہ آتا ہے جب اللہ کی بات سمجھ آتی ہے. تو کل کے کمنٹس میں شام کی کلاس میں یہی لکھا تو انہوں نے کہ مجھے بڑی خواہش تھی کہ میں سفر, بلکہ انچارج ہیں تو انہوں نے فیڈ بیک بھیجا ہوا تھا ای میل میں, کہ کلاس میں لوگوں کو ہم نے جب آپ کی شیئرنگ سنائی تو بہت خوش, یعنی سیڈ ہو رہے تھے, کچھ لوگ لکھ رہے تھے ہم کیوں نہیں گئے. لیکن جب میں نے اس میں آخر میں یہ کہا کہ علم کے بعد جائیں, تو ایک اسٹوڈنٹ نے لکھا تھا کہ آج مجھے پتا چلا کہ اللہ مجھے ابھی تک کیوں نہیں لے گیا, کہ پہلے میں علم حاصل کر لوں پھر جاؤں. تو شاید ہم سب اکٹھے چلیں کبھی پھر, اللہ تعالیٰ خیر کرے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانة فإنک تعلم ما تخفی الصدور. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.